मुख्य समाचारों में न्यू साउथ वेल्स में 1542 नए कोविड 19 मामले और 9 मौतों को दर्ज किया गया। अफगानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद पहली बार विदेशी नागरिक अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से हवाई मार्ग से बाहर निकले और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल गुरुवार को 5 देशों का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। न्यू साउथ वेल्स में कोविड 19 के सामुदायिक प्रसारण के 1542 नए मामले दर्ज हुए हैं और 9 मौतों को भी दर्ज किया गया है। प्रीमियर ग्लैडिस पेरिजिक्लियन ने कहा है कि सोमवार से सामुदायिक प्रसारण की चिंता वाले स्थानीय सरकारी क्षेत्रों में रहने वाले वयस्क जिनका पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है वो घर के 5 किलोमीटर के दायरे में अपने घर में रहने वालों के साथ पिकनिक मनाने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त घोषणा की गई है कि अगले सप्ताह से यानी सोमवार से राज्य के मंत्री सुबह 11 बजे कोविड 19 प्रेस कॉन्फ्रेंस में नियमित रूप से भाग नहीं लेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारी व्यक्तिगत रूप की जगह वीडियो लिंक के माध्यम से अपडेट प्रदान करेंगे। प्रीमियर का कहना है कि जरूरत पड़ने पर मंत्री बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे।
All of us have to start accepting that we need to live with COVID. Because COVID will be around for 3 or 4 years and it's not practical to do everything the same. Well, we will never know when that is.
विक्टोरिया में 334 नए स्थानीय कोविड संक्रमणों की सूचना मिली है जिसमें से आधे से भी कम मौजूदा मामलों से जुड़े हैं। 70 वर्ष की आयु के एक गैर टीकाकृत कोबर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। राज्य के लिए टीकाकरण का एक और रिकॉर्ड दिन रहा और 64% विक्टोरियन लोगों को अब टीके की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है। कोविड कमांडर जेरोन बीमर का कहना है कि राज्य 70% पहली खुराक के टीकाकरण के अपने लक्ष्य से काफी आगे चल रहा है और 70% होने पर कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी।
We are ahead of our projection of our first million, of our 1 million dose surge that we announced a few weeks ago, but also we're starting to really get ahead of that date to get to 70% of Victorians having had their first dose. A bit more work to go, but we think we will be well ahead of that original date of the 23rd of September. We think we'll smash that by quite a few days.
और विक्टोरिया की क्षेत्रीय ट्रेन सेवाओं में गंभीर रूप से बाधा आई है क्योंकि एक वी लाइन ड्राइवर ने कोविड 19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। गिप्सलैंड का ट्रेनर ड्राइवर सकारात्मक था, वो मेलबर्न के सदर्न क्रॉस स्टेशन पर मौजूद था और इसमें स्टाफ रूम भी शामिल है। परिवहन मंत्री बेन कैरोल का कहना है कि स्टाफ रूम या स्टेशन पर मौजूद सभी ड्राइवर्स को अब परीक्षण और आइसोलेट करने के लिए कहा गया है।
This has had an impact on our V-line driver network, as you can imagine. As I speak, some 20 services are now being disrupted, and we have 5 coaches out on the network supporting passengers where they need to go. While we only have 20 services at the moment, we are expecting the disruptions to go from 20. To around 100 services today.
एसीटी में स्थानीय रूप से प्राप्त कोविड 19 के 24 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 18 संक्रमण एक दूसरे से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री एंड्रयू बार का कहना है कि आधे से अधिक अपने संक्रामक काल के दौरान संगरोध में थे।
15 people are hospitalized as of this morning, and we have 4 in intensive care with 1 requiring ventilation.
क्वींसलैंड में स्थानीय रूप से प्राप्त एक नए कोविड 19 मामले का पता चला है। संक्रमित किशोरी ब्रिस्बेन के सनी बैंक उपनगर में सेंट थॉमस मोर कॉलेज में पढ़ती है। एहतियात के तौर पर स्कूल को दिन भर के लिए बंद कर दिया गया है। प्रीमियर एनेस्थीसिया पैलेशे का कहना है कि जब तक जांचकर्ताओं के पास अधिक जानकारी नहीं है तब तक स्कूल के समुदाय को घर पर रहने के लिए ही कहा गया है।
So it's just come to hand, so I apologise for being a little bit late this morning, but we'll get more information out to people later on this afternoon, and like I said, it's under investigation, we need to do more work.
प्रीमियर ने घोषणा की है कि न्यू साउथ वेल्स के साथ बॉर्डर बबल को सोमवार से बहाल किया जाएगा। छात्र और आवश्यक कार्यकर्ता 12 न्यू साउथ वेल्स स्थानीय सरकारी क्षेत्रों से क्वींसलैंड में यात्रा करने में सक्षम होंगे। ये वो जगह हैं जहां कल यानी शनिवार से कोविड-19 प्रतिबंधों को कम करने के लिए निर्धारित किया गया है। पिछले महीने पश्चिमी सैनिकों के जाने के बाद से अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे से पहली अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान से कतर के दोहा में 100 से अधिक यात्री रवाना हुए हैं। इस उड़ान से अफगानिस्तान में फंसे लोगों को और नई तालिबान सरकार से डरे हुए लोगों को आशा मिली है। अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस का कहना है कि 30 अमरीकियों और स्थायी निवासियों को उड़ान भरने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।
We certainly hope and we certainly expect there will be additional opportunities for Americans and others to whom we have that commitment to depart Afghanistan if they so choose using this and potentially other means as well.
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल गुरुवार शाम को 5 देशों के 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शांतिपूर्ण तरीकों से अफगानिस्तान में स्थिति को सुलझाने का आह्वान किया गया। शिखर सम्मेलन की घोषणा में कहा गया कि नेताओं ने समावेशी अंतर अफगान वार्ता की भी मांग की ताकि वहां राजनीतिक स्थिरता, नागरिक शांति, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। हालांकि शिखर सम्मेलन का विषय निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए सहयोग था, लेकिन ध्यान अफगानिस्तान पर केंद्रित रहा। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका समेत 5 देशों के समूह ने आतंकवाद से लड़ाई में अपनी प्राथमिकताओं को भी दोहराया, जिसमें आतंकी संगठनों द्वारा अफगान क्षेत्र को आतंकी क्षेत्र के रूप में उपयोग करने और अन्य देशों के खिलाफ हमले करने के प्रयासों को रोकना शामिल है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि ब्रिक्स के सभी देश आतंकवादियों के सीमा पार आंदोलन और आतंकवाद के वित्त पोषण नेटवर्क और सुरक्षित पनाहगाहों सहित आतंकवाद का हर रूप में मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान इस विषय पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बहुत कड़ी टिप्पणी करते हुए संभावित खतरों के बारे में बताया कि एक अस्थिर अफगानिस्तान कैसे पड़ोसी देशों के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी दूसरी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2016 में उन्होंने गोवा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस वर्ष ब्रिक्स का 15वां स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 73 सेंट और भारत के 54.27 रुपये के बराबर है। खेल समाचारों में, टेनिस में कनाडा की गैर वरीय यानी अनसीडेड 19 वर्षीय किशोरी लेला फर्नांडिस ने नंबर 2 सीडेड आर्याना सबलेंका को 7-6, 4-6, 6-4 से हराकर यूएस ओपन फाइनल में प्रवेश कर दिया है। फर्नांडिस जो दुनिया में 73वें स्थान पर हैं, उनका कल ब्रिटेन की एमा रेडुकानो या मरिया सक्कारी के साथ ग्रैंड स्लैम के फाइनल में मुकाबला होगा। और उधर भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में आज शुक्रवार से शुरू होने वाला 5वां और अंतिम टेस्ट भी खेला जाएगा। ये मैच असमंजस की स्थिति में था। टीम इंडिया के खिलाड़ियों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट कल गुरुवार को नेगेटिव आई, जिसके बाद इस मैच के होने का रास्ता साफ हो गया है। और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। एडिलेड में शाम के समय बौछारें, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। मेलबर्न में देर तक बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। होबार्ट में बौछारें बढ़ेंगी, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 6 डिग्री। कैनबरा में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री। सिडनी में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। ब्रिस्बेन में भी धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।